से भी बच्चों को शांति, सभी अपने विश्व कल्याण के मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चे विश्व कल्याणकारी स्वरूप सदा स्मृति में रखो। कैसे रहेगा? बस सदा स्मृति रहे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, या मैं विश्व कल्याणकारी अस्तित्व हूं। बस स्मृति रखनी है। पर स्मृति से पहले आपको निश्चय करना है, पक्का करना है कि आप हो या नहीं हो। आप स्वर्ग प्राप्त करने वाली आत्मा हो, पुरुषार्थ आत्मा हो, संगम युगी आत्मा हो, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने वाली आत्मा हो, चेक करना पड़ता है। Why you are here? तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें भगवान ने यहाँ क्यों रखा है, क्यों भेजा है, कारण क्या है? कंफर्म करना पड़ता है। विश्व कल्याणकारी स्वरूप सभी का नहीं होता, सभी बच्चों का नहीं होता। जिनकी किसी भी प्रकार की कोई चाहना है इस संसार के प्रति, इस यूनिवर्स के शिव बाबा के प्रति या परमात्मा के प्रति, वह विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। वो तो सब स्वकल्याणकारी है। विश्व कल्याणकारी की एक ही चाहना, तेरा कहना मेरा करना। बात समाप्त। और जोर जबरदस्ती बच्चे किसी को विश्व कल्याणकारी नहीं बना सकते, पॉसिबल नहीं है। विश्व कल्याण है, जोर जबरदस्ती से नहीं होता। ऐसे नहीं होता बच्चे कि हम मान ले कि हम है। जैसे मैं अब तक कहता आया हूं, तुम चेक करो तुम किस बिरादरी के हो, उसी प्रकार से अभी कहता हूं, ये एक बिरादरी है, स्वकल्याणकारी और विश्व कल्याणकारी। तो इसमें चेक करना पड़ता है हम किस बिरादरी से हैं। समझ की बात है बच्चे, तो तुम चेक करो तुम किस बिरादरी से हो, स्वकल्याणकारी या विश्व कल्याणकारी। बड़ी यात्रा है बच्चे, सारी ये सब समझना पड़ता है यात्रा को लेकर। बच्चे चेक करो तुम कौन हो, स्वकल्याणकारी या विश्व कल्याणकारी। कहने के लिए तो कहोगे विश्व कल्याणकारी, अच्छे लक्षण चेक करो। विश्व कल्याणकारी का लक्षण परमात्मा का, भगवान का कहना और उनका करना। समझ सारी, बड़ी यात्रा है बच्चे, सदा चेकिंग करनी पड़ती है। होश में रहना पड़ता है। स्व कल्याणकारियों के गुण अलग होंगे, विश्व कल्याणकारियों के गुण अलग होंगे। स्व कल्याणकारी माना क्या बच्चे? भले मैंने कहा है पर अभी विश्व कल्याण की यात्रा है, इसलिए ज्ञान बदला है। स्वकल्याणकारी माना क्या? मैं भला, मेरी श्रीमद भली, मेरा बाबा भला, मेरी सेवा भली। तुम्हारी सेवा तुम जानो, तुम्हारे सेवा में कुछ बिगड़ा है, उल्टा पुल्टा हुआ है तुम जानो, हमें कोई मतलब नहीं उससे। यह है स्वकल्याणकारी। तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। समझ, अपने तक सीमित, इसलिए वो स्वकल्याण के लिए बहुत अच्छा स्वमान है। मैं भला, मेरा बाबा भला, मेरी श्रीमत, मेरी सेवा। विश्व कल्याणकारी के लिए नहीं बच्चे। विश्व कल्याणकारी माना सबको साथ लेके जाएगा, सब चेक करेगा, सब ठीक है ना, अपने दाल बनाई ठीक बनी है ना, आपकी सब्जी ठीक बनी है ना, आपका चावल ठीक बना है ना, आपकी रोटी ठीक बनी है ना, झाड़ू पोछा हो गया ना ठीक से। और ऐसे नहीं कि वो पूछेगा, नहीं हुआ है तो वो खुद जाके करेगा। समझना पड़ता है मिर्च यात्रा को, खुद मदद करेगा वहां पर जाकर। तो बच्चे, विश्व कल्याणकारी का अर्थ क्या है? आपके दाल में कोई मदद चाहिए, आपके सब्जी में कोई मदद चाहिए, चावल में, रोटी में। और ऐसे नहीं कि एक को मदद की, इनका हुआ फ्री है आपको, उनका हुआ फ्री है उनको, उनका हुआ उनको, माना उसका काम है बस मदद करते फिरना और कार्य पूरा करना, क्योंकि परमात्मा का कार्य है। ऐसे नहीं कि मुझे दी गई सेवा ही पूरी करेंगे। अच्छा, विश्व कल्याणकारी माना सबको साथ लेकर चलेगा। ऐसे भी नहीं कि अपना कुछ नहीं किया और दूसरों का करने के लिए वो दौड़ रहा है, नहीं, पहले अपनी सेवा पूरी करेगा और समय निकाल के सबको मदद करेगा। ये तो स्थूल उदाहरण है बच्चे। विश्व कल्याणकारी का अर्थ क्या है कि अपनी स्थिति बनाकर सबको उनकी स्थिति बनाने में मदद करना, ऐसे चलना है। माना जो मैंने धारण किया है उसके लिए मैं सबको सिखाऊंगा कि ये कैसे करना है। वो एक ही गुण धारण करेगा पर एक सारी दुनिया भर घूमता फिरेगा सिखाने के लिए, कहेगा एक गुण सीखा है हमने आपको, अगर धारण करना है तो हम सिखाते। 5 ही मिनट की बात होगी पर सारे दुनिया भर क्लासेस करेगा, 5 5 मिनट के, बड़े भी नहीं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, पर उस 5 मिनट के ज्ञान के लिए वो सब जगह दौड़ेगा क्योंकि धारण किया है। विश्व कल्याणकारी मना बच्चे सबका भला, और विश्व कल्याणकारी के मन में कोई स्वार्थ नहीं होता कि मुझे कुछ मिले, मुझे कुछ प्राप्ति हो जाए, नहीं, मेरे पास भगवान ने, परमात्मा ने दिया है बांटने के लिए, मुझे सबको देना है, सबको देना है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास दिया है उसने, ट्रस्टी बनकर चलता है वो, ये मेरा नहीं है। हमेशा ध्यान में रखना बच्चों इस बात को, सुनकर थोड़ी हैरानी होगी। ज्ञान देने वालों को कभी भाग्य नहीं मिलता क्योंकि वो ज्ञान उनका नहीं है। बांटना है तो बांटो। योग सिखाने वालों को कभी कोई भाग्य नहीं मिलता, सिखाना है तो सिखाओ क्योंकि तुम्हारा नहीं है वो तो परमात्मा का है, वो तो शिव बाबा का है जो तुम दे रहे हो, और तुम उसके बदले में भाग्य की चाहना कैसे रख सकते हो? हाँ ठीक है, उसकी मर्जी हुई, उसने कुछ अलग से दिया तो बात अलग है, पर तुम स्वार्थ रखकर सेवा नहीं कर सकते बच्चे, नहीं ऐसे कर सकते। समझ की बात है, सारे होश में आना पड़ता है। कभी भंडारे में, पंगत में भोजन परोसा है, वो भोजन तो तुम्हारा होता नहीं, तुम तो परोसने वाले होते हो। तुम आए, तुम्हें सेवा मिली, तुम परोस रहे हो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि इस सेवा के बदले में हमें कोई प्राप्ति हो जाए। भोजन तो मालिक का है, तुम तो बस परोसने के लिए आए हो निमित्त रूप में सेवाधारी। और परोसते हुए ध्यान भी रखना पड़ता है। कभी कभी कोई किसी छोटे बच्चे को बहुत ज्यादा सब्जी परोस देता है, वेस्ट चली जाती है वो उसके खाते में परोसने वाले के। होश पूर्वक कार्य करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है बच्चे हर बात में। यात्रा बड़ी है, बड़ी वंडरफुल यात्रा है। इसलिए बच्चों विश्व कल्याणकारी बहुत अलग होते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। समझ की बात है सारे, उन्हें बस कार्य करना होता है। उसके बदले में उन्हें कोई भी अवार्ड रिवॉर्ड पसंद नहीं होता। मालिक तारीफ करे, नो एक्सेप्ट, उनको पसंद नहीं। समझ सारे, होश में रहना पड़ता है बच्चे। विश्व कल्याणकारी का अर्थ क्या है? मेरा कुछ नहीं, इवन मेरा बाबा भी नहीं, मेरी सिर्फ तेरी आज्ञा श्रीमत। तू भी मेरा नहीं, सिर्फ तेरी श्रीमत मेरी है। वो भी किसके लिए? क्योंकि तेरी है, तेरे लिए, मेरे लिए नहीं। तू जो चाहता है वो हो जाए उसके लिए। समझो इन बातों को। हाँ, मेरा बाबा स्व कल्याणकारियों का हो सकता है, विश्व कल्याणकारियों का नहीं होता। विश्व कल्याणकारियों का बैच जो बनना चाहिए ना, वो होना चाहिए मैं और मेरी श्रीमत, मैं आत्मा और मेरी श्रीमत, ये बैच होना चाहिए। स्व कल्याणकारियों का होता है मैं और मेरा बाबा। बैच से पता चलेगा स्व कल्याणकारी है या विश्व कल्याणकारी है। बड़ी यात्रा है मिर्च, समझ, वंडरफुल यात्रा है। विश्व कल्याणकारी बहुत अलग बात है मिर्च। संपूर्ण त्याग, मतलब परमात्मा को भी त्याग दिया परमात्मा के लिए, इसे कहते हैं बच्चों विश्व कल्याणकारी। नथिंग इज माइन, तुम भी नहीं, बस तेरी आज्ञा हमारी, विश्व कल्याणकारी। बड़ी बात है बच्चे। इसलिए परमात्मा ये जबरदस्ती किसी को टाइटल नहीं देता कि तुम विश्व कल्याणकारी हो। नहीं बच्चे, उसके लिए बहुत पात्रता लगती। जैसे इस संसार में तुम्हारे बड़े बड़े अवार्ड रिवॉर्ड है हर एक क्षेत्र के, कोई नोबेल है, कोई ऑस्कर है, कोई फलाना है, बड़े बड़े अवार्ड यूनिवर्स लेवल के। तो बच्चे दुनिया के जैसे बड़े बड़े अवार्ड रिवॉर्ड है, उसी प्रकार से परमात्मा का सबसे बड़ा अवार्ड है विश्व कल्याणकारी। अगर ये उसने किसी को दे दिया, आप समझ जाओ वो उसकी बिरादरी में आ गया। वो शक्ति है, ऐसे किसी के कहने से नहीं होता बच्चे, ये सब किसी के मानने से नहीं होता कि हम विश्व कल्याणकारी है। परमात्मा सर्टिफिकेट दे, जिस दिन वो कहता है कि बच्चों तुम विश्व कल्याणकारी हो, अब देखोगे वो शक्ति आप में प्रवेश हो जाएगी। जैसे बैच में किसी को देता नहीं हूं, या भट्टी में बहुत आते हैं पर बैच नहीं देता मैं, लंबा समय हो गया, नहीं देता बाबा किसी को भी। उसी प्रकार से अवार्ड रिवॉर्ड है, समझ की बात है बच्चे, जागना पड़ता है। परमात्मा के नोटबुक का सबसे बड़ा टाइटल है, किताब का सबसे बड़ा किताब है ये, विश्व कल्याणकारी। ये मिल गया, सब मिल गया, सब कुछ, पर उसके लिए पात्रता भी तो चाहिए। क्या झूठा अवार्ड दे, वो तो शब्दों का नाटक होगा। ऐसे नहीं बच्चे किसी को भी झूठा अवार्ड रिवॉर्ड दे सकते, विश्व कल्याणकारी का नहीं हो सकता है। समझ, कल भी बातें कही हमने विश्व कल्याण की, आज भी वही बातें हैं। विश्व कल्याणकारी इसका अर्थ क्या है? एक तो श्रीमत पर चलने वाले, दूसरा बाप के साथ चलने वाले, विश्व कल्याणकारी। देखो बच्चों विचार करो, बड़ी बात है, बड़ी यात्रा है और वो दे देता है टाइटल ऐसे। बच्चे चेक करो अपने को, विश्व कल्याणकारी बन पाओगे? बड़ी यात्रा है, संपूर्ण त्याग, अपने शांति का, सुख का, प्रेम का, ज्ञान का, एवरी थिंग। बचा क्या? वापिस वही कह रहा हूं, तेरा कहना हमारा करना, और कराने वाला भी तू। इतना सा बचा, हमारा ज्ञान रैप अप कर दिया, वाइंड अप कर दिया, सुहा कर दिया, शांति हवा में फूंक दी, प्रेम खुशी सुख सब जल गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। तेरा कहना और हमारा करना, ये हमारी यात्रा है। समझ की बात है बच्चे, बड़ी यात्रा है बच्चे, जागो बच्चे, जागो, होश में आओ बच्चे। देखो बनना है तो बनो, स्व कल्याण की भी परिभाषा ऐसी कुछ है। स्व कल्याण के लिए बाहरी सब त्यागना पड़ता है, सब कुछ, एवरीथिंग, सब त्यागना पड़ता है, कुछ नहीं बचता। देह से देह के सारे संबंध त्यागने पड़ते हैं, सब कुछ, तब स्व कल्याण होता है। जब तक आपकी अपनी खान पान की आदत है, स्व कल्याण नहीं हो सकता। जब तक आपकी अपनी पहनने की आदत है, स्व कल्याण नहीं हो सकता। जब तक आपकी अपनी व्यवस्था की आदत है, स्व कल्याण नहीं हो सकता। स्व कल्याण के लिए भी बाहरी रूप से सब कुछ त्यागना पड़ता है, सब कुछ, क्योंकि वो आप नहीं हो, वो आपका मायावी स्वरूप है। समझो इन बातों को। अध्यात्म माना त्याग, बिना त्याग के अध्यात्म घटित नहीं होता बच्चे। और अगर बिना त्याग के तुम किसी प्रकार के अध्यात्म में चल रहे हो, तो तुम भ्रम में चल रहे हो, माया जाल में चल रहे हो। तुम पॉसिबल ही नहीं बच्चे बिना त्याग के अध्यात्म घटित हो जाए। हर वो आदत त्यागनी पड़ती है जो पुराने जीवन से संबंधित है। बैठने की आदत, उठने की आदत, बात करने की आदत, भाषा की आदत, खान पान की आदत, वस्त्र अलंकार व्यवस्था की आदत, सब त्यागना पड़ता है, तब बच्चे स्व कल्याण होगा। स्व कल्याण भी कठिन है बच्चे, इतना आसान नहीं है। ऐसे नहीं बच्चे कि रंगीन वस्त्र त्याग दिए, सफेद पहन लिए, प्याज लहसुन नॉनवेज मांस मटन मछली अंडा त्याग दिया, बिना प्याज लहसुन का भोजन शुरू किया, फलाहार शुरू किया, स्वकल्याण हो गया? नहीं बच्चे, ये तो बेसिक धारणा है। ब्रह्मचर्य धारण किया, बेसिक धारणा है सब कुछ। ये कोई बड़ी बात है नहीं तुमने जो की है। स्वकल्याण के लिए भी बच्चे सब त्यागना पड़ता है, सब कुछ। तुम्हारी पुरानी मुस्कुराहट भी नहीं रख सकते, पुराना कुछ भी। समझ, स्वकल्याण के लिए पुराना नाम भी त्यागना पड़ता है, गुरु से नया नाम लेना पड़ता है, तब स्वकल्याण होता है। पुराने नाम की कोई संबंध की कोई स्मृति भी रही तो भी तुम पुराने हो। बस तुम ढोंग कर रहे हो खुद से और दूसरों से कि तुम आध्यात्मिक हो, तुम स्वकल्याणकारी हो। सब त्यागना पड़ता है, और किसके मत से चलेंगे? गुरु के मत से। गुरु जो आज्ञा दे, गुरु जो श्रीमत दे, वैसे चलना पड़ता है। समझ की बात है बच्चे, यात्रा है स्व कल्याण की। तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाओ। अपने से तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तक तुम अपने से कुछ कर रहे हो, तुम संसारी हो। सन्यासी कौन? जो श्रीमत अनुसार करता है वो सन्यासी है। मन मत अनुसार जो करता है, परमत अनुसार जो करता है, वो गृहस्थी है। सिंपल सी बात है। जरूरी नहीं कि वो सन्यास में रहता है या घर गृहस्थ में रहता है। वो किसके हिसाब से करता है उस पर उसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है कि वो सन्यासी है या गृहस्थी है। समझ है बच्चों, चेक करना पड़ता है। स्वकल्याण भी कठिन है आसान। और जो तुम्हें त्यागना है वो तुम आत्मा की आदतें नहीं है। तुम एक अपनी आत्मा की आदत बताओ, सांसारिक आदत एक आत्मा की, खान पान की, वस्त्र अलंकार व्यवस्था की, तो फिर छोड़ने में आपत्ति क्या है जब तुम्हारी आदत नहीं है तो? अगर आत्मा की वो आदत नहीं है, ये खान पान आत्मा को अच्छा नहीं लगता, तो किसको अच्छा लग रहा है फिर? और अगर उसको अच्छा लग रहा है तो तुम्हारे देह के द्वारा उसे खाने क्यों दे रहे हो? कोई और अस्तित्व है ना, तुम्हारी तो बुद्धि नहीं अटकी उसमें ना, आत्मा के उस वस्त्र व्यवस्था में अलंकार में बुद्धि अटकी है। तो ये वस्त्र व्यवस्था अलंकार किसको चाहिए? वो कौन है? ये तो चेकिंग है बच्चे। फिर उस बात को लेकर किसी को कुछ कहे तो गुस्सा आता है, नाराज होते लोग। नाराज होने वाला भी वही अस्तित्व है। तुम्हें लगता है आत्मा नाराज होगी? मार दी थप्पड़ आत्मा को, होगी नाराज? नहीं हो सकती। तो कौन नाराज हो रहा है तुम्हारे द्वारा कि इन्होंने हमें ऐसा बोला, उन्होंने वैसा बोला, बाबा ने डांट दिया? ये कौन है? संभालो हाँ बच्चे, तुमने उसे खत्म नहीं किया तो वो तुम्हें खत्म करेगा, इतना निश्चित है। दोनों में से एक बचेगा और एक मरेगा। किसको बचाना है और किसको मारना है ये तुम्हारी मर्जी है। दोनों नहीं बचेंगे न दोनों मरेंगे, एक बचेगा एक मरेगा, तुम देखो। समझ के बात है। आपको लगता है आत्मा में कितनी भी तमो प्रधान आत्मा हो जाए, विपरीत कोई गुण ठहरेगा एक सेकेंड के लिए भी? लगता है किसी को? बस आत्मा, आपको आत्मा की कोई अकल नहीं, फिर भी देखो आप उत्तर दे रहे हो कि बाबा आत्मा में कोई विपरीत गुण नहीं रह सकता, पॉसिबल नहीं, क्योंकि आत्मा बहुत पवित्र है। कुछ भी नहीं जानते आप आत्मा के बारे में, ना आप आत्मिक स्थिति में उस रूप से, फिर भी आप उत्तर दे रहे हो। विचार करो रियलिटी में आत्मा कितनी सुंदर होगी फिर। तो फिर ये जो विपरीत गुण जिसमें ठहरे हैं वो कौन है? बहुत बड़ा प्रश्न है बच्चे हैं। और तुम उसी के उलझनों में उलझे हुए हो। इन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, इन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने वैसा बोला, ये किया वो किया, हमें डांट दिया, गाली दे दी, अपमान किया, निंदा की, ग्लानि की। अभी बाबा क्या कहे, किसको समझाऊं मैं? समझ है बच्चे, जागो, होश में आओ। आत्मा आत्मा होती है, बहुत अस्तित्व आत्माओं को जागृत होने नहीं दे रहे। वो दोष उनका नहीं है, आत्मा खुद जागृत होना नहीं चाहती, दोष आत्मा का है। जागना पड़ता है, इसलिए परमात्मा ने कहा है, निंदा स्तुति मान अपमान पाप पुण्य सबसे परे जाओ। जरूरी है बच्चे, परे जाना, परे जाना बहुत आवश्यक है, वरना तुम अपने को नहीं समझ पाओगे, तुम इन्हीं उलझनों में उलझे हुए रहोगे। ठीक करना पड़ता है बच्चे, बड़ी यात्रा है सारी बच्चे। अपने स्मृति में रहो, देखो तुम्हारे तन को कोई इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारे तन के द्वारा कोई खा रहा है, कोई पहन रहा है, कोई व्यवस्था का सुख ले रहा है, कोई हंस रहा है, खेल रहा है, बातें कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, मौज कर रहा है, पिकनिक मना रहा है, पर तुमने कभी सोचा नहीं उस अस्तित्व को तुम्हारे कल्याण की कुछ नहीं पड़ी। अंदर से कभी आवाज आई, मुरली 5 बार पढ़ते सुनते, जरा आत्मिक स्थिति करते, जरा याद में बैठते, जरा सकाश देते, कोई नहीं आवाज दे रहा है। किसी किसी को आती होगी, तो सभी को तो नहीं आती है ना, तो उसको तुम्हारे कल्याण की कुछ नहीं पड़ी है, और तुम हो कि उसी की सेवा में लगे हो। उसको टाइम टू टाइम तुम खाना बना के दोगे, ध्यान से देखो खाना किसको दे रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हें भी भोजन में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें अपने कल्याण में इंटरेस्ट है, पर टाइम टू टाइम तुम उससे भोजन बना रहे हो, वो भी स्वादिष्ट। मैं ये नहीं कहता नहीं बनाओ, बनाओ, बस तुम खाओ। वो खा रहा है, वो आनंद ले रहा है, कहते आज ये सब्जी नहीं वो सब्जी चाहिए, कल कहता है रोटी चाहिए, परसों कहता है दाल चावल चाहिए, क्या क्या खा रहा है पी रहा है। और बाकी संसार की बातें तो छोड़ ही दो, क्या क्या हो रहा है, समझ के बात है। छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, क्या कोई आत्मा मांस मटन मछली खा सकती है? आत्मा किसी जीव को मार के उसका शरीर खा सकती? आत्मा तो खाने वाला कौन है, क्वेश्चन मार्क है। चेक करो कौन खा रहा है, समझ। मैं आत्मा की बात पूछ रहा हूं, होश में आना पड़ता है बच्चे। देखो तुम उसकी कितनी व्यवस्था करते हो, टाइम टू टाइम खाना देना है, पानी देना है, उसे उतना आराम देना है, और बच्चे उस अस्तित्व को तुम्हारे कल्याण की कुछ नहीं पड़ी है। उस अस्तित्व ने कभी तुम्हें संकल्प दिया है आज 8 घंटे 10 घंटे मिले तो 6 घंटे सोते और 4 घंटे जगकर तपस्या करते हैं? देता है वो अस्तित्व विचार? नहीं दे रहा है। 8 घंटे मस्त सोएंगे, आज थोड़ा एक्स्ट्रा सोते हैं, समय मिला है, समझ की बात है। होश में आओ, कोई अस्तित्व है, तुम्हारा ही अस्तित्व है वो, जो तुम्हें चला रहा है और तुमसे सेवा करा रहा है, तुम्हारे कल्याण की कोई बात वो करना नहीं चाहता, किसी से सुनना भी नहीं चाहता, इतना कड़ा हो चुका है वो अस्तित्व। समझ है बच्चे, संभाल करो, वो खा रहा है तुम्हें, तुम्हारी आयु खा रहा है, ऊर्जा खा रहा है, तुम्हारा पुण्य खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, वो भोग रहा है सब। तुम्हारा ही अस्तित्व है बच्चे, जागो, होश में आओ, गफलत नहीं करो, तुम आत्मा हो, स्वकल्याण अर्थ सब त्यागो। त्यागो माने छोड़ना नहीं है, पर किसी में अटकना नहीं। त्याग किन बातों का किया जाता है? जहां तुम अटके हो, जहां तुम फंसे हो। ऐसे नहीं कि अन्न त्यागो, वस्त्र त्यागो, व्यवस्था त्यागो और सन्यासी बनकर जंगल में जाओ। वापिस वहां अन्न तो लगेगा ना शरीर को, वस्त्र तो लगेंगे ना, थोड़ी बेसिक व्यवस्था तो लगेगी ना। तो परमात्मा त्याग नहीं सिखाता? इस संसार में कौन है बताओ जिसने संपूर्ण सब कुछ त्यागा है? हाँ, हिमालय के महायोगी मिलेंगे जिन्होंने अन्न भी त्याग दिया, जल भी त्याग दिया, हवा भी त्याग दी, अग्नि भी त्याग दी, आसमान भी त्याग दिया, और जो ईथर है उससे उनका शरीर चलता है, उस ऊर्जा से, ब्रह्म तत्व से। पर बाकी कौन है संसार में? संसार किसी का नहीं छूटता, बस बड़े से छोटा होता है, क्योंकि वही सांस लेना है, वही खान पान है। ठीक है, खान पान बदला है, पर तुम क्या अपनी सब्जियां बदल दोगे? वही बनाओगे ना जो इस संसार में अवेलेबल है? वस्त्र भी वही पहनोगे ना? व्यवस्था भी ठीक है, बड़े महल से झोपड़ी में आ गए, अच्छी बात है, पर संसार नहीं त्यागा जाता पूर्ण रूप से किसी का भी। बस समझना पड़ता है, बैलेंस बैलेंस साधना पड़ता है, समझ की बातें हैं। जागो, वही रोटी है ना बच्चे। अगर तुमने संसार छोड़कर तुम तपस्या के लिए कहीं गए, फिर भी उसी गेहूं की रोटी खाओगे ना, ज्वार बाजरा ही खाओगे ना, चावल की रोटी, रागी की रोटी, चावल ही खाओगे ना, दाल वही है ना। त्याग कौन सा करना है? मन्मथ परमत का, यही सबसे बड़ा त्याग है। एक बार तुमने मन्मथ परमत छोड़ी, इस अस्तित्व का सब कुछ छोड़ जाएगा, क्योंकि मन्मथ और परमत उसका प्राण है, उस अस्तित्व का। तुम अपने हिसाब से कुछ भी करना छोड़ दो, वो अस्तित्व मुक्त हो जाएगा। वो भी होना चाहता है, क्योंकि परमात्मा आया है, उसे पता है, उसे भी लगता है हमें बाबा को ज्यादा परेशान नहीं करना है, सहज रूप से हमें मुक्ति में जाना है। समझ है बच्चे? जागो, होश में आओ और उसे त्यागो। वो अस्तित्व कैसे मुक्त होगा? मन्मथ परमथ त्यागो। अब तक मैंने श्रीमत पर चलने के लिए नहीं कहा है, बस मैंने मन्मथ परमथ त्यागने के लिए कहा है। देखो क्या होता है, तुम्हें बहुत सुंदर अनुभूति होगी, क्योंकि बच्चे तुम्हारी लाइफ कोई और जी रहा है, तुम्हें पता भी नहीं है, कोई और जी रहा है। प्रमाण सिंपल है, तुम कुछ और करना चाह रहे हो पर हो कुछ और रहा है। इसी से सिद्ध होता है कि तुम्हारी लाइफ कोई और जी रहा है। तुम वो कुछ नहीं कर पा रहे हो जो तुम निर्णय लेते हो, डिसाइड करते हो, कुछ और ही हो रहा है। जागो बच्चों और मन्मथ परमथ त्यागो। ज्यादा विस्तार में नहीं जाता हूं आज। मन्मथ परमथ त्यागो, वो मायावी अस्तित्व मुक्त हो जाएगा, वही अस्तित्व संपूर्ण रूप से तुम्हारी जीवन जी रहा है, तुम्हें पता भी नहीं, किसी को नहीं पता ये कौन कर रहा है। समझ, बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, उनको पूछो ये ज्ञान जो आपने अभी क्लास में सुनाया, इसमें से कौन सी धारणा आप में है? उत्तर मिलेगा कोई नहीं, तो फिर ज्ञान सुनाने वाला जरूर कोई और है। क्योंकि अगर आपका ज्ञान होता तो जरूर आप पहले धारण करते, फिर ही आप सुनाते। अगर उसमें से कोई धारणा आप में नहीं है तो कोई और ही सुना रहा है। सब जगह कोई और है, सब जगह। मुश्किल संसार में आपको कोई मिलेगा जो कहेगा, ये मेरी जो लाइफ है, जो ईश्वर ने दी है, प्रभु ने दी है, मेरा ये जो जीवन है सबसे बेस्ट है, परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। मुश्किल कोई मिलेगा, हर कोई मिलेगा जिसको जीवन में थोड़ा ना थोड़ा चेंज करना है। ऐसे होता ना तो थोड़ा ठीक हो जाता, वैसे होता ना तो थोड़ा ठीक रहता। इसका अर्थ क्या है? तुम कुछ और चाहते हो कुछ और रहा है, तुम्हारे जीवन जी कोई और रहा है। बस बाबा को ये समझाना है। हर वक्त ध्यान दो, भोजन पानी व्यवस्था आराम कोई और ही है। 8 घंटे रोज रात को विश्राम कराते हो शरीर को, पर कभी सोचा है आज 8 घंटे विश्राम करा के कल 8 घंटे तपस्या करेंगे? नहीं, वापिस वही खान पान मौज मस्ती के लिए, वस्त्र अलंकार व्यवस्था के लिए सज तैयार, उसी भोग के लिए। अरे कब तक भोगोगे? ये संसार के भोग, जिंदगी के भोग कब तक भोगोगे? क्या जागना नहीं है? भोग से आत्मा थकी नहीं है क्या? तंग नहीं हुए हो इन्हीं भोगों से? कभी थकान नहीं आई वही भोजन करते करते, वही वस्त्र अलंकार व्यवस्था में चलते? समझ है बच्चे? कब तक भोगोगे संसार को? कब तक रस लोगे? तुम नहीं हो वो कोई और है। क्योंकि आत्मा को कोई रस नहीं है संसार में, आत्मा को बस अपने कल्याण में रस है। आत्मा अभी कुछ भी करके अपना कल्याण करना चाहती है, और वो जो अस्तित्व है भोग से बाहर नहीं आ रहा है। समझो इन बातों को, जागो। यही जागृति है कि मेरे तन द्वारा कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, मैं नहीं हूं। कभी तो अपने कल्याण के बारे में सोचो। कभी लगा है कि आज बहुत अच्छा भोजन किया, शरीर को दिया, बड़ी तृप्ति आई, अभी जरा 2 घंटे पुरुषार्थ करते हैं? नहीं लगा? देखो संसार के सारे भोग लेकर भी तृप्ति भी नहीं हो रही है ना, आत्मा कल्याण की यात्रा कर पा रही है। वो कभी तृप्त नहीं होगा बच्चे, वो अस्तित्व। ध्यान दो, समझो इन बातों। जोर जबरदस्ती यात्रा करनी पड़ेगी। जब तुम यह यात्रा करने जाओगे तो थोड़ा इरिटेशन आएगा, स्थिति ऊपर नीचे होगी, पर करते रहना है। जो हो सो हो, उस पर ध्यान नहीं देना है। मन में क्या विचार चल रहे, बुद्धि कहाँ भटक रहे, संस्कार क्या कर रहे, ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपनी यात्रा करनी है, उस पर ध्यान दिया तो फंस जाओगे। समझ की बात है सारी। जैसे हमने एक छोटी सी रील देखी थी, विदेश की थी, दो छोटे बच्चे झगड़ रहे थे, दो बच्चियां थी एक माँ की, वो माँ किचन में सेवा कर रही थी। लिटरली वो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, माँ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। एक ने तो एक को दांत से काट दिया, छोटे बच्चे को, बड़े ने, माँ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। माँ अपना भोजन या कुछ वहां की क्लीनिंग उस व्यवस्था में बिजी थी। थोड़े समय के बाद नॉर्मल हो गए, दोनों ने एक दूसरे को पास ले लिया, वो बड़ी बेटी छोटी को पास लिया, उसको शांत कराया। माँ ने वो भी नहीं देखा, माँ अपनी सेवा में बिजी थी। बस इस उदाहरण से बात समझो, वो मन को इरिटेट करेगा, बुद्धि को भटकाएगा, संस्कार ऊपर नीचे, ध्यान नहीं देना इन बातों पर। तुम आत्मा को जो करना है वो करते रहना है, मन के पीछे नहीं लगना है, बुद्धि के साथ नहीं दौड़ना है, और संस्कार को लेकर के भागना नहीं, उनको अपना काम करने दो, उनको लड़ने दो, जो करना है करने दो, तुम अपना काम करो, तुम बस आत्मा की जागृति और आत्मा की स्मृति रखो कल्याण की, बस यात्रा खत्म। समझो इन बातों, मैंने लास्ट टाइम भी मुरलियों में कहा था, मन में जो आता है वो करते क्यों, कोई तो दे रहा है ना मन में, तुमने कॉन्शियसली तो सीट पर सेट होकर विचार तो नहीं किया है ना, मन में आता कहाँ से, कोई तो दे रहा है बच्चे, और फिर तुम वही पूरा करने के पीछे लग जाते हो। बुद्धि में विजन कोई तो दे रहा है, संस्कारों में से कोई संस्कार इमर्ज कर रहा है, इनके पीछे लगोगे बच्चे तुम आत्मा को बर्बाद कर दोगे, क्योंकि इनको कोई और चला रहा है, उस माँ ने कैसे निग्लेक्ट किया वैसे तुम निग्लेक्ट करो। समझ के बात है बच्चे, जागो, कल्याण के बारे में सोचो, कल्याण को लेकर बड़ी बात कहता हूं, सिर्फ मन मत पर मत नहीं, मन बुद्धि संस्कार को भी त्यागो, इनको भी त्याग दो बच्चे, तुम इनके भरोसे नहीं रहना कि मन एक दिन सुधरेगा और मेरा कल्याण हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध बन जाएगी और मेरा कल्याण हो जाएगा, संस्कार पवित्र दिव्य बनेंगे और मेरा कल्याण होगा, कभी नहीं होगा। जो है शुद्ध पवित्र दिव्य वो आत्मा को होना है, वो है, बस उसे जागरूक रहना है, अपने सीट पर सेट रहना है, मन बुद्धि संस्कार के भरोसे नहीं रहना, सब डूब जाएगा क्योंकि वो किसी और के हाथ में है, मन में विचार आ रहा है आने दो, आई डोंट केयर, बुद्धि में कुछ विजन आ रहा है आने दो, संस्कार कुछ इमर्ज हो रहे होने दो, देखो यात्रा कैसी होती है, तुम निग्लेक्ट करो इन्हें, बड़ा आनंद आएगा। समझो इन बातों को, इन पर ध्यान नहीं दो, सारा संसार क्या ठीक करना चाहता है, मन, मेरा मन ठीक नहीं, सारा संसार क्या ठीक करना चाहता है, बुद्धि, मेरी बुद्धि ठीक नहीं, सारा संसार क्या ठीक करना चाहता है, संस्कार, मेरे संस्कार ठीक नहीं, संस्कार ठीक होंगे, बुद्धि ठीक होगी, मन ठीक होगा, फिर आत्मा ठीक होगी, बच्चे ठीक होंगे, फिर माता पिता ठीक होंगे, ये तो बच्चे पागलपन हुआ, समझ है बच्चे, सारी बड़ी यात्रा है, तुम इन पर ध्यान मत दो, किसी भी रूप से इन पर ध्यान नहीं देना, समझो इन बातों को, समझ कर चलो बच्चे, मन बुद्धि संस्कार ध्यान नहीं देना किसी भी रूप से, तुम अपने स्थिति में रहो, अपने सीट पर सेट रहो, इस संसार में सबसे बड़ा मूर्ख और पागल व्यक्ति कौन पता है, जो अपने मन बुद्धि संस्कार को ठीक करना चाहता है, जो खुद नहीं ठीक होना चाहता आत्मा, और अपने मन बुद्धि संस्कार को ठीक करना चाहता, पागल है बच्चे, मन बुद्धि संस्कार के भरोसे नहीं चलना, इनके भरोसे नहीं चलना, तुम आत्मा संकल्प रखना, तुम आत्मा विजन क्रिएट करना, तुम आत्मा अपने संस्कारों को इमर्ज करना, आत्मा के संस्कार ध्यान में रखना, संस्कारों में जो संस्कार है वो पार्ट के हैं, अभी संस्कार ही पार्ट के होंगे तो बुद्धि में विजन कौन सा आएगा, पार्ट का ही है, बुद्धि में विजन अगर पार्ट का ही आ रहा है तो मन में विचार कौन से चलेंगे, पार्ट के, और आत्मा पार्ट से परे, आप इसे समझो। जागो बच्चे, आत्मा पार्ट से परे है। कोई एक्टर होता है देखो, उसका डायलॉग बोलने का ढंग सेम होता है हर मूवी में, मानो वो एक पार्ट में अटका है। उसके संस्कार सेम होते हैं हर मूवी में, बुद्धि भी सेम प्रकार की दिखाते हैं, मानो वो उस मूवी में अटक गया जो उसकी सुपरहिट हो गई, तो संस्कार जरा ज्यादा स्ट्रांग हो गए। पर उसकी अपनी जो पर्सनालिटी वो तो रहनी चाहिए ना, लौकी घर में भी वैसे ही चलेगा फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बच्चे आत्मा इन सबसे परे है, पार्ट से परे जाने की कोशिश करो। हर अस्तित्व के अंदर सिर्फ पार्ट के संस्कार पड़े, और जब तुम आत्मिक स्थिति में बैठोगे तो पार्ट समाप्त होता जाएगा। अभी नया पार्ट मिलेगा ना सभी को, ऐसे तो नहीं ना कि पुराना ये पार्ट मिलेगा, तो फिर पार्ट के संस्कारों में क्यों रहना है, नहीं रहना है। और बच्चों ध्यान में रखो, बड़ी बात बताता हूं, सभी समझो इन बातों को। इस पुराने जीवन का एक भी संस्कार बचा इतना सा, अरे ऐसे हाथ किया ना, अरे इतना सा संस्कार, ऐसे बात करने का संस्कार, आंखों का संस्कार, बैठने का संस्कार, इतना सा, तो भी तुम्हें दोबारा इसी तन में जन्म मिलेगा। जब तक संपूर्ण संस्कार नहीं निकलते तब तक तुम इस तन से नहीं छूट सकते, ये तन श्राप होगा तुम्हारा, बहुत बड़ा श्राप होगा। तुम इस तन को कितनी बार भी मारो, पर जब तक संस्कार नहीं मरते तब तक तुम्हें दूसरा तन नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चे थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसके बारे में, एक भी संस्कार रहा तो भी यही तन तुम्हें मिलेगा, दोबारा तुम्हें वही मेहनत करनी पड़ेगी, वापस कुछ रहा दोबारा मेहनत होगी। पुराना कोई संस्कार नहीं बचना चाहिए, बिल्कुल पुरानी कोई भी आदत नहीं बचनी चाहिए किसी भी प्रकार की, तब बच्चे मुक्त हो जाओगे। इसलिए जागो वरना फंस जाओगे, अटक जाओ। सिंपल लॉ है बच्चे हर ड्रामा का, तुमने अभी देवी देवताओं के संस्कार धारण किए, तुम्हें देवी देवताओं के कितने जन्म मिलेंगे पता है? कब तक मिलेंगे पता है? जब तक देवी देवताओं के संस्कार है। जिस दिन देवी देवताओं का आखिरी हल्का संस्कार भी खत्म हो जाएगा, हल्का, ऐसे देवी देवताओं का एक संस्कार है कृपा करने का, ये हल्का संस्कार भी नहीं रहा अभी तुम्हें, अभी तुम्हें अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। ये कोई विनाश नहीं हुआ है, त्रेता के बाद संस्कार समाप्त हुए हैं, इसलिए सब देवी देवताएं ह्यूमन तन में आ गए, मनुष्य तन में आ गए, बात समाप्त हो गई। जागो, मना कोई तन अच्छा हो या बुरा, देवी देवताओं वाला हो या शुद्र मनुष्य तन हो, तब तक मिलता है जब तक तुम्हारे पास उसके संस्कार। जैसे तुमने संस्कार बदल दिए वो तन बदल जाता है, सिंपल सी बात है बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है। जागो, होश में आओ। कोई सोचेगा बाबा फिर किसी को स्त्री या पुरुष तन कैसे मिलता है? किसी ने पुरुष का कोई संस्कार धारण किया, खड़ा है अगला जन्म पुरुष का, किसी ने स्त्री का संस्कार धारण किया, खड़ा है अगला जन्म स्त्री का, आत्मा का, सिंपल सा गणित है बच्चे। संस्कारों से जन्म मिलता है, तुम्हारे संस्कार कौन से देखो, संस्कारों से यात्रा होती है बच्चे। इसलिए जिस तन में तुम बैठे हो ये तन अगर संपूर्ण रूप से छोड़ना चाहते हो, त्यागना चाहते हो, तो इसका हर एक संस्कार त्यागो, उठना बैठना खाना पीना जागना सोना एवरीथिंग बच्चे, इस तन की हर आदत त्यागो और नए बन जाओ, नए संस्कार धारण करो जो परमात्मा सिखा रहा है। ऐसे थोड़ी बच्चे मुरलिया पढ़ ली अमृत वेला आए किए तुम देवी देवता बनोगे, जो कोई बनता है वो संस्कारों से ही बनता है, जो कोई बनता है वो संस्कारों से बनता है। देखो तुम्हारे संस्कार कैसे हैं, समझो सारी बातें और अपना कल्याण करो, सभी का कल्याण, सभी बच्चों को बाप के परमात्मा के पदम गुणा याद प्यार, शिव प्रभात परमात्म प्रभात, सदा खुश रहो मौज में रहो आनंद में रहो और परमात्मा के ज्ञान को अति गंभीरता से धारण करो। वाह बच्चे वाह, ओम शांति।
रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना यार प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा ओम शांति।
शांत।
वाह बाबा वाह वाह जामा वाह वाह रे मैं आत्मा वाह वाह रे मेरा भाग्य वाह वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुणा पदम गुणा शुक्रिया बाबा
शुक्रिया बाबा।
अच्छा ओम शांति।
ओम शांति।